आपने भागवत में सुना, वहां पर प्रभु का ज्ञान अवतार अवश्य होता है, क्योंकि भक्ति जन्म देती है ज्ञान को। जिन देवहूति के यहां पर कपिल के अवतार का प्रसंग श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, जब नौ कन्याओं को करदम जी महाराज ने देखा, अपना दंड कमंडल उठाकर के वन की राह पकड़ने लगे थे, लेकिन देवहूति ने प्रार्थना की कि आप मुझे एक पुत्र और प्रदान करें, तो करदम जी महाराज विंद सरोवर पर रुके हैं और एक दिन अपने अंदर भगवत आवेश देखा और देवहूति ने गर्भ धारण किया और जिन देवहूति के गर्भ में आकर के साक्षात भगवान विराजे और पवित्र मास में पवित्र वेला में भगवान ने देवहूति के गर्भ से साक्षात ज्ञान अवतार धारण किया। बोलो कपिल देव
भगवान की जय।
पांच श्लोकों में भगवान ने अपने पिता करदम जी को सन्यास का उपदेश भागवत में दिया कि सन्यास का क्या स्वरूप है। देखो, सन्यास केवल जोगिया वस्त्र पहनना नहीं है, सन्यास के बारे में प्रभु ने गीता में भी ये बात कही है और श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि आसक्ति का त्याग ही सन्यास है, मोह का त्याग ही परम सन्यास है, कर्म का त्याग, गृहस्थ का त्याग, अग्नि का त्याग ही केवल सन्यास नहीं है। आसक्ति अटैचमेंट, मोह का, आसक्ति का त्याग ही परम सन्यास है। तो अपने पिता को प्रभु ने पांच श्लोकों में श्रीमद् भागवत में सन्यास का दिव्य वर्णन किया और मई सन्यस्त कर्मणा कह करके समझा करके अपने पिता को वन में भेजा, लेकिन मां को नहीं भेजा, ये समझना है, क्योंकि सन्यास में दो का संग नहीं है, सन्यास का मतलब ही अकेला है, वहां दो का संग नहीं, पति और पत्नी का संग, हाँ पत्नी यदि साथ रह सकती है तो दो आश्रमों में, गृहस्थ में और वानप्रस्थ में, हाँ वानप्रस्थ में भी पत्नी का साथ पति के साथ हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में और सन्यास आश्रम में स्त्री का संग नहीं है। तो अकेले भगवान ने भेजा श्री करदम ऋषि को और करदम जी महाराज गए। इधर विंध्य सरोवर पर भगवान इंतजार कर रहे थे मां का कि कब आसक्ति संसार से छूटे, मां की और मां से मैं कुछ ज्ञान चर्चा करूं। एक दिन देवहूति अपने संसार के दुखों को झेलते झेलते इतना दुखी हो गई कि अपने पुत्र कपिल की शरण में आई है और आकर के उसने भगवान को निवेदन किया कि तम त्वागताहम् शरणम् शरण्यम् स्ववृत्ति संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहम् प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम् वरिष्ठम। देवहूति ने प्रणाम करके भगवान को कहा कि प्रभु, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूं। तो मां को देख करके प्रभु बोले, मां कहो क्या आदेश है, क्योंकि मां है ना और पुत्र कपिल है। लेकिन जब कहा कि क्या आदेश है तो देवहूति ने कहा कि नहीं कपिल, अब आदेश तो आपको मुझे करना है, मैं अब तक आपको केवल अपना पुत्र समझती रही, वो ये मेरी भूल हो गई, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, मैंने सोचा कि मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लूं, तो मैंने आंखों को रूप दिया, कानों को शब्द दिया, रसना को मैंने स्वाद दिया और इस त्वचा को मैंने स्पर्श भी बहुत दिया। फिर भी मैं इस इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकी। विषय देकर मैं अतृप्त रही, उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में घी डाले और मन में सोचे, हवन करते समय जब हम हवन करते हैं तो अग्नि में घी डालते समय कहते हैं स्वाहा स्वाहा। अब कोई व्यक्ति अग्नि में घी डाल रहा हो और ये सोचे कि अग्नि शांत हो जाए शांत हो जाए शांत हो जाए, तो ये उसका पागलपन होगा। अरे भैया, तू अग्नि में घी भी डाल रहा है और कहता है कि अग्नि शांत हो जाए, तो अग्नि में घी डालने से क्या अग्निदेव कभी शांत होंगे? आग तो उतना ही प्रज्वलित होगी, भड़केगी। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों का ये कहना है, मत है कि इन इंद्रियों से खूब भोग भोगो। ये मानव जीवन केवल भोगों के लिए मिला है, प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं, भोग की ओर जाओगे तो रोगी हो जाओगे। भोगी व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता है, भोगी व्यक्ति रोगी बन जाता है। जैसे अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि शांत नहीं होती, उतना प्रज्वलित हो जाती है। अब डॉक्टर ने मना किया है कि डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना। हां डॉक्टर साहब, नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब डॉक्टर को तो हम मना कराए, लेकिन जब घर में आए और सामने यदि रसगुल्ला बादाम का हलवा आ गया तो बोले एक चम्मच खा ही लेते हैं। अरे डॉक्टर ने मना किया है, एक गोली ही तो ज्यादा खानी पड़ेगी। गोली खाना मंजूर है लेकिन रसगुल्ला को छोड़ना मंजूर नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी। रसना स्वाद मांगेगी, आंखें रूप मांगेंगी, कान शब्द मांगेंगे, तो इनको दो। लेकिन यही शास्त्र से हमें समझना है क्या देना है, क्या खाना है। यदि आंखें रूप मांगें, प्रेम से कहो श्री राधे, यदि आंखें रूप मांगे तो संसार का रूप तो हमने बहुत दिया। अरे कभी कभी आकर के इन आंखों से अपने आराध्य का दर्शन भी कर लिया करो। आंखों की तृप्ति तो अपने आराध्य के दर्शन में ही है, बिना दर्शन के हमारी तृप्ति नहीं होगी। यदि कान शब्द मांगे तो फिल्म का गीत तो बहुत सुनते हो, अरे कभी कभी प्रभु का भजन भी गुनगुनाया करो, गाया करो, सुना करो। रसना बहुत स्वाद मांगती है, इसको तृप्त करने में तुम लगे हो लेकिन कभी तृप्त नहीं होगी ये रसना। जितना आप इसे रस दोगे, जितना स्वाद दोगे, उतना अतृप्त रहेगी। बोले रसना की तृप्ति तो प्रसाद में है। वस्तु को प्रसाद समझ करके जब ग्रहण करोगे तब आपको संतोष और तृप्ति होगी। तो आज देवहूति ने भगवान को जब ये कहा कि प्रभु आप मुझे कृपा करके ज्ञान प्रदान करें, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा मन में कि आज मेरी माँ के अंदर मेरे प्रति ब्रह्म भाव समाप्त नहीं है, पुत्र भाव की समाप्ति है और ब्रह्म भाव का मेरी मां के अंदर निष्ठा है, जागरण है। तो भगवान ने विचार किया कि अब मां से मैं कुछ ज्ञान चर्चा करूं। योग आध्यात्मिक पुंशाम मतो निश्रेयसाय में भगवान अपनी मां की प्रार्थना को सुनकर के बोले कि मैया, यदि सुख और दुख इन दोनों से निवृत्त होना हो तो अध्यात्म में प्रवेश करो। थोड़ा समझ लें, व्यक्ति के जीवन में जब सुख आता है तो दुख हटता है लेकिन मिटता नहीं है। यहां यह समझाया है, यदि हमारे जीवन में सुख आ गया तो दुख हटा लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि फिर आने की संभावना है। कोई व्यक्ति ये समझ ले कि अब मैं बहुत सुखी हो गया तो कभी दुख आएगा ही नहीं, नहीं, फिर आने की संभावना व्यक्ति के जीवन में बनी है, फिर आ सकता है दुख, क्योंकि हर सुख के पीछे दुख छिपा है, हर दुख के पीछे सुख भी है। जैसे धूप और छाओं का संग है, जैसे जन्म और मृत्यु है, इसी प्रकार से सुख और दुख है। हमेशा के लिए कोई व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, कोई ना कोई दुख उसके जीवन में आएगा, क्योंकि गीता में भगवान ने यह बात अर्जुन को कही है कि ये दुख का घर है संसार, ये दुखालय है, ये सुखालय नहीं कहा प्रभु ने। तो हर व्यक्ति के जीवन में यदि सुख है तो कुछ दिन के लिए दुख हटा और सुख आया लेकिन मिटा नहीं। एक बार व्यक्ति के जीवन में जब आनंद उसे प्राप्त होता है तो आनंद प्राप्त होने पर वो सुख और दुख दोनों से निवृत्त हो जाता है। आनंद आने पर फिर दुख हटता नहीं है, बोले सदा सदा के लिए बोले मिट जाता है। इसलिए हम आनंद की ओर चलें। आनंद क्या है? भगवान ने कहा कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय मे। जब अध्यात्म व्यक्ति प्रवेश करता है, अध्यात्म जगत की ओर जब चलता है, तब उसे उस आनंद की अनुभूति होती है। और वो आनंद एक बार जब व्यक्ति के जीवन में उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये आनंद एक बार जब व्यक्ति के जीवन में उसे प्राप्त हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति निरंतर आनंद में ही डूबा रहता। फिर आनंद उसके जीवन, हमारे ठाकुर जी का नाम भी तो आनंद कंद है ना, कृष्ण को क्या कहते हैं? आनंद कंद, आनंद कंद है। तो एक बार जिसके जीवन में प्रभु आ जाते हैं तो वो व्यक्ति फिर कभी दुख की ओर नहीं जाता, सुख और दुख से ऊपर आनंद में पहुंच जाता है। उसके जीवन में सुख दुख आते हैं लेकिन कोई उसे प्रभावित नहीं कर पाते। भगवान बोले कि मां, आप सत्संग करें, क्योंकि सत्संग से व्यक्ति को विवेक होता है, और सत्संग से ही सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। भगवान ने कहा कि जब ये सत्संग करता है व्यक्ति तो सत्संग से मेरी कथा सुनने को मिलती है, और मेरी कथा को सुनकर, मेरे सत्संग को सुनने के बाद जो अंदर भक्ति पैदा होती है, ध्यान देना, प्रेम से कहिए श्री राधे। सत्संग से कथा से जो भक्ति हमारे अंदर पैदा होती है, वो भक्ति जिसे कहते हैं अहेतु की भक्ति, माने वो भक्ति बिना कारण के है, उस भक्ति में कोई कारण नहीं है। और किसी के द्वारा सुनकर के, माने चर्चा सहज संसार में, परिवार में कहीं हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो वहां पर श्रद्धा समाप्त होने का भी फिर अंदर, उस श्रद्धा समाप्त भी हो सकती है, क्योंकि उस श्रद्धा के अंदर विश्वास नहीं है। श्रद्धा के साथ साथ विश्वास का होना भी जरूरी होता है। जिस श्रद्धा में विश्वास आ जाए वहां पर फिर वो श्रद्धा और विश्वास मिलकर के प्रेम का रूप ले लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय, जब सत्संग से हमको जो भक्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। जिसमें कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु के दर्शन की इच्छा है बस। अब वो कृपा करें वो उनकी इच्छा है, वो उनकी कृपा पर निर्भर है। वो क्या कृपा हमारे पर करना चाहते वो तो मेरा आराध्य ही जाने, मेरा ठाकुर ही जाने, लेकिन हम उनका दर्शन करने उनके द्वार तक जरूर जाएं। लेकिन निष्काम भक्ति यदि हमारे अंदर होगी, अहेतुकी भक्ति हमारे अंदर होगी, तो अहेतुकी भक्ति उस लिंग शरीर को जला करके भस्म कर देती है। और भगवान को निष्काम भक्त अत्यंत प्रिय है। आपने सुना होगा शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, ये शिवाजी के गुरुदेव थे। और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था बैंडा। ये बहुत भोला भाला शिष्य था। एक बार गुरुदेव को चातुर्मास के लिए जाना था, लेकिन कुटिया में आश्रम में राम जी की सेवा थी और ये बैणा शिष्य भोला भाला, लेकिन बैणा का एक अर्थ होता है टेढ़ा भी होता है। बहुत भोला था ये। तो गुरुदेव ने उसे समझाया कि बेटा मैं चातुर्मास के लिए जा रहा हूं और तू मेरे ठाकुर की ठीक प्रकार से सेवा करना। यथा नरे तथा नारायण, जैसे तू अपना ख्याल रखता है शरीर का, ऐसे ही तू भगवान की सेवा करना। बोले गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। अब गुरुजी तो सेवा का कार्य सौंप करके अपने उस भोले भाले शिष्य को चातुर्मास करने के लिए चले गए दूसरे गांव में। अब प्रथम दिन जब हुआ, अब गुरुदेव ने कहा था कि यथा नरे तथा नारायण, तो प्रथम दिन जब सेवा का आया तो प्रातः काल शौच क्रिया से निवृत्त होकर के वो शिष्य भगवान के सन्मुख गया। बोले मैं तो शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो चुका हूं, लेकिन ठाकुर जी को भी तो शौच जाना होगा ना, नित्य क्रिया उनको भी तो करानी है ना। तो एक लोटा भर करके पानी का गया और ठाकुर जी के सामने रख दिया कि महाराज जाइए शौच आदि क्रिया से। अब ठाकुर जी को कोई शौच आदि क्रिया की, वो तो उनसे निवृत्त हैं। एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, पंद्रह मिनट हो गए बैठा रहा। प्रभु आपको, अच्छा गुरुजी नहीं है इसलिए आप नहीं जा रहे हो, आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे गुरुदेव ने आपकी सेवा सौंपी है। तो भगवान को उस भोले भक्त की प्रार्थना को सुनकर के लोटा लेकर के शौच आदि क्रिया के लिए जाना पड़ा। प्रभु गए उसकी भोली भाली सेवा पर इतना रीझ गए। कोई कामना नहीं है, केवल ठाकुर की सेवा की भावना है, निष्काम भाव है, केवल सेवा का भाव है। आश्रम में वो शिष्य और भी संत आते, उनकी भी देखभाल करते थे, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद बहुत और भी संत आ गए। अब सुबह से लेकर के ठाकुर की सेवा भी करनी पड़ती थी और जो और संत आ गए थे आश्रम में उनकी सेवा भी करनी पड़ती थी। तो उसने देखा कि भगवान के पास में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। तो हनुमान जी को देख करके उस भोले भाले भक्त ने कहा कि महाराज आप तो देखने में बहुत तगड़े हो और मुझे सुबह से लेकर के शाम तक इतने संत आश्रम में आ गए हैं, मुझे पानी भरना पड़ता है, मुझे रोटी उनके लिए बनानी पड़ती है, तो आप भी कुछ काम करो ना हनुमान बाबा। हाथ जोड़ करके भक्त ने जब प्रार्थना की तो हनुमान जी बोले कि क्या सेवा करूं, बोले आप पानी भरने का काम करो। इतने संत आ गए हैं, हनुमान जी बोले अवश्य। कि वायु सुते जलाहारे लक्ष्मणो दार भेदने जानकी पाक संसिद्धो रामस्तु पुटयो जन। अब हनुमान जी महाराज को तो पानी भरने की सेवा में लगा दिया, अब लक्ष्मण जी से प्रार्थना की। लक्ष्मण बोले भैया मैं क्या सेवा करूं, बोले आप महाराज लकड़ी फाड़ने का काम करो। ठीक है, माता सीता को बोले आप मेरे साथ आप भी रोटी बनाने की सेवा में लग जाओ, और राम जी को बोले वो दोना बनाने में लगे हैं, दोना पत्तल सेवा में लगे। भगवान उस भक्त की निष्काम भक्ति पर रीझ करके सेवा में लगे हैं, और प्रेम से ठाकुर सेवा कर रहे हैं अपने भक्त की, क्योंकि प्रभु ने कहा कि अहम भक्त पराधीन, मुझे बांधने में यदि कोई समर्थ है तो वो भक्ति रूपी सूत्र है, और कोई डोरी में मैं बंधता नहीं हूं। इधर जब चातुर्मास पूर्ण हुआ, गुरुदेव चातुर्मास पूर्ण करके जब आश्रम में लौटे तो आश्रम के द्वार पर बाहरी वो बेणा भगत भोला भाला अपने गुरु का स्वागत करने के लिए आए। गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा गुरुदेव पधारिए। बोले सब ठीक प्रकार से कार्य हो रहा है ना? बोले गुरुदेव बिल्कुल सब ठीक प्रकार से सेवा हो रही है, आप अंदर तो चलिए। अंदर गए तो क्या देखा कि हनुमान जी महाराज तो सिर पर पानी का कलसा भर कर के लिए चले आ रहे हैं, रसोई में माता सीता रोटी बना रही है, लक्ष्मण जी लकड़ी फाड़ने का काम कर रहे हैं, और प्रभु बैठे बैठे दोना बना रहे हैं। ये देखकर के गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्य को कहा ये सब क्या हो रहा है, ये कैसी सेवा, अरे तू ठाकुर से स्वयं सेवा करा रहा है। जब अपने शिष्य को डांटना शुरू किया तो प्रभु ने कहा कि नहीं आप इस शिष्य को मत डांटो गुरुदेव, जितना हम आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं थे उतना आपके इस निष्काम भक्त की सेवा से प्रसन्न है। क्योंकि अब तक हम निष्क्रिय बैठे थे, आपके सेवक ने तो हमको भी कर्मयोगी बना दिया, हम भी सेवा में लग गए। कहने का अभिप्राय, ये प्रसंग सुनाने का अभिप्राय यह है कि भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भक्त है वो मुझे अपनी भक्ति रूपी सूत्र में बांध लेता है, लेकिन कुछ भक्त भगवान से कामना करते हैं तो भगवान उनको उतना दे देते हैं, लेकिन उसके भक्त के बंधन में ठाकुर नहीं बंधते हैं, बंधते उसी के बंधन में हैं जो प्रभु की कामना रहित भक्ति करता है, और कामना रहित भक्ति हमको सत्संग और कथा से ही प्राप्त होती है। तीन प्रकार की भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। लेकिन देवहूति की प्रार्थना करने पर भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया, और यहां अष्टांग योग की भी चर्चा की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और जिसमें पांच सीढ़ियां भगवान ने समझाया अपनी मां को कि ये देह को शुद्ध अवस्था में लाने के लिए है, और फिर है धारणा, प्रणाम सबको करो लेकिन ध्यान में एक ही हो, इष्ट एक ही होता है, एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। हाँ, प्रणाम सबको करो लेकिन सजदा ध्यान एक का ही होता है। किसी का तिरस्कार मत करो, कोई बड़ा छोटा नहीं है कि हमारे भगवान जी बड़े हैं उसके भगवान छोटे हैं, नहीं, भगवान कोई परमात्मा छोटा बड़ा नहीं है। शक्ति एक है, नाम रूप अनेक हैं, तो एक का ध्यान, और जब अपने इष्ट का ध्यान करने के लिए बैठे तो सबसे पहले चरणों से प्रारंभ हो और राम का कृष्ण का ध्यान करें तो चरणों से प्रभु का ध्यान प्रारंभ करते हुए यही प्रार्थना करिए। आइए उन श्याम सुंदर के, उन गोविंद के श्री चरणों में हम ये प्रार्थना करें सभी मिलकर के, कैसे हम उनके श्री चरणों का ध्यान करेंगे।
मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
मेरी सांस सांस में तेरा,
मेरी सांस सांस में तेरा
है नाम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
भक्तों की तुमने
काना विपदा है डारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है डारी,
भक्तों की तुमने काना
विपदा, भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी,
मेरी विदा था वो आके बिहारी,
मेरी विदा था वो आके बिहारी,
मेरी विदा था वो
आके बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले,
मेरी सांस सांस में तेरा,
मेरी सांस सांस में
पतझड़
है मेरा जीवन बन के बहार आ जा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आ जा,
सुन ले पुकार ताना
बस एक बार आ जा,
सुन ले पुकार ताना
चैन मन के तुम ही होवे, चैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, कुछ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले
सांस सांस में तेरा,
ओ मेरी सांस सांस में तेरा
है
नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले,
मेरी सांस सांस में तेरा,
मेरी सांस सांस में तेरा,
मेरी सांस सांस में तेरा,
ओ मेरी सांस सांस में तेरा
है नाम मुरली वाले,
मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले।
कपिल भगवान देवहूति से बोले, मां ध्यान चरणों से प्रारंभ होता है, इष्ट का जब ध्यान करें तो चरणों से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने अपने चरणों में चार चिन्ह विशेष बताए हैं, और वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, जिनका ध्यान जब साधक करता है तो वज्र का ध्यान करने से उसका वह बंधन कटता है, अंकुश का ध्यान करने से उसका मन रूपी हाथी वश में होता है, ध्वजा का ध्यान करने से उसका यश बढ़ता है, और कमल के फूल का चिन्ह का जब ध्यान करता है तो एक बात बार बार साधक के मन में आती है कि जैसे जल में कमल का फूल उत्पन्न होता है, जल से ही पैदा हुआ और फिर उसका जल से कोई संबंध नहीं रहता है, इसी प्रकार से भक्त की, साधक की कोई विशेष दुनिया नहीं होती है। साधक भक्त इसी ही दुनिया में जन्म लेता है, लेकिन रहता कैसे है? जैसे जल में कमल का फूल, निर्लिप्त संसार में रहकर भी ये बताया कि ऐसे संसार में रहो जैसे जल में नौका, नौका में जल नहीं। यदि नौका में जल होगा तो डूबेगी, जल में नौका हो, नौका में जल न हो। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर मत रखो। ये कमल का फूल इस बात का प्रतीक है साधक के लिए। साधना के पथ पर ध्यान के समय कमल के फूल का भी ध्यान श्रीमद् भागवत में प्रभु ने स्वयं बताया। इस प्रकार से एक एक अंग का ध्यान करते करते अंत में अपने ध्यान को प्रभु के मुखारविंद पर साधक केंद्रित कर दे। चरणों से ध्यान का प्रारंभ हो और मुखारविंद तक जाए, लेकिन शक्ति का जब ध्यान करो, जो शक्ति के उपासक हैं, राधा रानी का भी ध्यान करना हो, श्री जानकी जी का, मां दुर्गा का, जो शक्ति के उपासक हैं, तो मुखारविंद से प्रारंभ करके चरणों तक आना चाहिए साधक को। और ठाकुर का ध्यान करना हो तो चरणों से लेकर के मुखारविंद तक, इस प्रकार से रूप ध्यान प्रभु का होना चाहिए। देवभूति के प्रश्न करने पर भगवान ने जीव के गर्भावस्था के बारे में भी बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। देवभूति का यह प्रश्न था कि कैसे संसार में जीव की उत्पत्ति होती है। भगवान ने कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतक कणाश्रय। भगवान ने बताया कि कैसे संसार में जीव की उत्पत्ति होती है, कैसे संसार में जीव आता है। लेकिन ये भागवत में जो एक एक मास के बारे में प्रभु ने देवभूति को समझाया है, आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने को तैयार है, लेकिन भागवत में 6000 वर्ष पहले वेदव्यास ने ये बात लिखी थी कि जीव माँ के गर्भ में कैसे कैसे जीव की का बीज पड़ता है, कैसे कैसे जीव का शरीर का निर्माण होता है, भागवत में इसका वर्णन किया है देवभूति के प्रश्न करने पर भगवान ने। लेकिन एक बात प्रभु जो माँ को समझाना चाहते हैं वो विशेष, भगवान का आप कपिल गीता में विशेष भक्ति के बारे में प्रभु ने माँ को प्रवचन किया है, सांख्य के बारे में भी माँ को समझाया और सांख्य में 24 तत्वों का निरूपण भी प्रभु ने किया है, लेकिन भगवान विशेष भक्ति को ही सर्वोपरि बता करके ये बता रहे हैं कि ज्ञान में भी 3 शर्तें हैं और भक्ति की भी 3 शर्तें हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, ज्ञान में पहले श्रवण है, फिर मनन है और फिर निधिध्यासन है, लेकिन भक्ति का प्रारंभ होता है समर्पण से। भक्ति में पहले समर्पण है और फिर है संबंध, भगवान से एक संबंध होता है भक्त का, और तीसरी बात है चिंतन। भक्त का फिर निरंतर अपने आराध्य का चिंतन होता रहता है। पहला है समर्पण, दूसरा है संबंध और तीसरा है चिंतन। ये भक्ति का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। भगवान ने माँ को ये सब सुनाया, देवभूति ने भगवान का पूजन किया और पूजन करके भगवान माँ को बिंद सरोवर पर विराजमान करके वहां से चले। माँ ध्यान में बैठी और देवहूति ने अपने देह को त्यागा, सिद्धपुर में सिद्धा नदी के रूप में परिणत हो गई। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, मनु जी की जो तीन पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिन आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ तो उनके यहाँ भगवान यज्ञ बनकर के प्रकट हुए, और देवहूति की कथा अभी अभी आपने सुनी जिनके यहाँ कपिल भगवान उत्पन्न हुए, और प्रसूति का विवाह किया था दक्ष महाराज के साथ, और जिनके यहाँ पर इनकी बेटी उत्पन्न हुई जिनका नाम था सती, और जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आपने कहा है कि सती का विवाह शिव के साथ हुआ, लेकिन मैंने एक बात और सुनी है। परीक्षित, क्या सुना आपने? तो राजा ने कहा कि शिव और दक्ष का कितना मधुर संबंध था आपस में, ससुर और दामाद, लेकिन मैंने सुना कि आपस में विरोध भी था। देखिए, परीक्षित ने यह प्रश्न किया है भागवत में कि मैंने सुना कि दोनों का आपस में विरोध भी था, तो विरोध क्यों? क्योंकि भगवान शिव जिनकी अर्धांगनी है सती और दक्ष महाराज की जो बेटी है, और अपनी आत्मजा सती जी से तो दक्ष बहुत स्नेह करते थे, और शिव के प्रति उनका ये भाव क्यों हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, देखो, एक बार देवताओं की सभा में सब देवता लोग बैठे थे, गंधर्व, किन्नर, प्रजापति, उस सभा में भगवान ब्रह्मा भी बैठे हैं और शिव भी बैठे थे। लेकिन दक्ष प्रजापति का यह नियम था कि किसी भी यज्ञ में जब ये जाता तो सबसे अंत में, क्यों? कि अंत में जब मैं जाऊंगा तो लोग उठ करके मुझे प्रणाम करेंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि मैं प्रजापति हूं, सभी में श्रेष्ठ हूं, इस सम्मान की भूख थी। तो सबसे अंत में जाकर के ये वहां खड़ा हुआ, सभी सम्मानित कर रहे थे दक्ष को, दो व्यक्ति नहीं उठे, नहीं तो सब खड़े थे, एक ब्रह्मा जी नहीं उठे और दूसरे भगवान शिव भी नहीं उठे। अब ब्रह्मा की ओर देखा तो मन में विचार किया कि ये तो मेरे पिता है, शिव की ओर जब देखा तो शिव को देखकर के दक्ष प्रजापति को लगा कि अरे, एष में शिष्यताम प्राप्तः, इन्होंने तो मेरा शिष्यत्व प्राप्त कर लिया है, शिव को शिष्य कहा, प्रेम से कहिए श्री राधे, क्यों कहा? दक्ष प्रजापति बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा पर मैंने अपनी बेटी सती का विवाह इनके साथ किया है, तो मैं इनका गुरु तुल्य हूं, पूजनीय बन गया, ससुर भी पूजनीय होता है, इसलिए ऐसा कहा कि एष में शिष्यताम प्राप्त, इन्होंने मेरा शिष्यत्व प्राप्त कर लिया है, लेकिन उठकर के मुझे सम्मानित नहीं किया, मुझे आदर नहीं दिया, रुंड मुंडों की माला पहनते, चिता की भस्म लगाते, स्मशान भूमि में रहते हैं, प्रेतों का संग करते हैं, इतना बड़बड़ाने लगा, इतना शिव को कटु शब्द कहा, लेकिन अंत में इतना अविवेक होकर विवेक खो दिया और शिव को श्राप दिया कि अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिवीर भव सहभागम न लवताम देवैर देव गणाधम, कि आज से शिव के नाम की आहुति किसी यज्ञ में नहीं निकाली जाएगी, इनका भाग किसी यज्ञ में नहीं दिया जाएगा। लेकिन भगवान शिव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, बिल्कुल शांत बैठे रहे, चुप। देखिए गाली कब लगती है, आपको कोई गाली दे, हो सकता है कभी कारण से भी गाली मिलती है, कभी बिना कारण के भी मिल जाती है। हाँ, कभी हमारी ऐसी कोई गलती हो तो हमको डांट गाली तिरस्कार मिलता है, लेकिन कभी व्यक्ति का अकारण भी हो सकता है तिरस्कार। शिव का अकारण तिरस्कार है, क्योंकि भगवान शिव तो आंखें बंद किए बैठे हैं, शिव को तो मालूम ही नहीं, अपने प्रभु के ध्यान में बैठे थे, कौन आया कौन गया। लेकिन भगवान शिव ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि गाली भी लगती कब है, भैया आपको कोई गाली दे। और गाली हमको किसी ने दी और तुरंत हमने उसका उत्तर दे दिया, तो मानो हमको गाली लगी तब हमने उत्तर दिया, और यदि हमने उत्तर नहीं दिया तो हमको गाली लगी कहां। गाली तो तब लगी जब उत्तर दिया गया, लेकिन जब उत्तर ही नहीं दिया तो हमको गाली कैसे लगी। तो शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, शांत भाव से उठकर के वहां से भगवान शिव चल दिए। वहां पर नंदीश्वर थे, क्योंकि भृगु आदि ब्राह्मण उस श्राप का अनुमोदन कर रहे थे, तो नंदीश्वर ने कहा कि अरे दक्ष, तूने हमारे शिव को जिस मुख से गाली दी है ना, जा तेरा मस्तक भी बकरा का बन जाए। शिव गणों ने भी श्राप दिया कि जाओ तुम वेद आदि ग्रंथों को भूल जाओ, आपस में श्रापाशापी होने लगी। अब भगवान शिव ने जब सुना तो भगवान बोले कि यहां तो अकारण झगड़ा है। समझदार व्यक्ति का यही समझ है कि ऐसा कभी कहीं बानक बन जाए, बात बने ऐसी किसी समाज में किसी सभा में, तो वहां पर बोलने का काम नहीं है। ये शिक्षा इस कथा से लो। भगवान शिव शांत भाव से उठकर के वहां से चले गए, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब से दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को श्राप दिया, तब से कोई यज्ञ नहीं करता था, यज्ञ होना ही बंद हो गए संसार में। अब दक्ष ने विचार किया, दक्ष को बेचैनी हो गई कि कोई यज्ञ नहीं करता। लेकिन यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखो। एक यज्ञ होता है किसी कामना को लेकर के, हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें हमारा कोई पर्सनल अपनी कामना अपना संकल्प होता है। और दूसरा यज्ञ होता है किसी को नीचा दिखाने के लिए। और तीसरा यज्ञ होता है सबके कल्याण के लिए। देखिए, अब जिसने अपनी किसी इच्छा को रख करके कोई पर्सनल संकल्प लेकर के कोई यज्ञ किया है तो उसकी कामना पूर्ण होती है, लेकिन जो नीचा दिखाने की भावना से यज्ञ किया जाए उस यज्ञ से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन भगवान की प्रसन्नता का कारण एक ही यज्ञ होता है, यह ध्यान रखना। हमने कोई कामना से अगर यज्ञ किया तो वो हमारी कामना प्रभु ने पूरी कर दी, लेकिन उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं जो सबके कल्याण के लिए किया जाए। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो महायज्ञ है जिसमें मुख्य रूप से बाबा यजमान के रूप में हमारे मध्य में विराजमान है, ये किसी व्यक्ति का एक संकल्प का यज्ञ नहीं है। ये कि किसी ने पर्सनल कोई संकल्प लेकर के यज्ञ किया हो है? या किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ है बाबा के ही आशीर्वाद से और सबके मंगल की कामना को लेकर के, कि सबका मंगल हो, सब पर कृपा हो, ये यज्ञ। ऐसे यज्ञ से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा यज्ञ ही निर्विघ्न पूर्ण होता है और ऐसे यज्ञ का फल भी प्रत्यक्ष मिलता है। जो सबका मंगल हो ऐसा भावना रख करके यज्ञ किया जाए। तो दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, गंगा के तट पर शुरू किया। बृहस्पति सब नाम का यज्ञ, सबको आमंत्रित किया, लेकिन अपनी बेटी और अपने दामाद को नहीं बुलाया। सती जी को जब मालूम हुआ कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि देवता लोग अपनी देवियों के साथ विमान में बैठ करके जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो सती जी उनके मुख से सुनकर बात अपने पति शिव के पास गई और जाकर के बोली कि प्राणनाथ चलिए। भगवान बोले कहाँ? बोले बहुत दिन से आप निकले नहीं, कहीं गए नहीं, आज तो चलिए ना। बोले कहाँ पर? बोले मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं गंगा के तट पर। तो भगवान शिव ने कहा कि सती मैं चलता, अवश्य चलता, आपकी बात को टालता नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा। सती जी आपको बुरा नहीं लगे? बोले कहिए महाराज, कैसी बात आप कर रहे हैं? देखिए आपके पिता ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है, और आपके पिता की दृष्टि में हमारे लिए स्नेह नहीं है। नैनन नहीं स्नेह और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। मैं कैसे जाऊं? सती जी ने कहा कि मेरे पिता हैं महाराज, ठीक है आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन ती जगह तो बिगर बुलाए चले जाना चाहिए। ये सती जी ने भागवत में कहा है ये बात कि स्त्री को अपने पति के पास अपना ही घर है, बेटी को अपने माता पिता के और शिष्या को अपने गुरुदेव के द्वार पर, तो मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने मना किया। आज सती बिना शिव की आज्ञा के जब चलने लगी, भगवान शिव ने विचार किया कि अगर मैं इनको यहां पर रोकूंगा जबरदस्ती, तो निश्चित ये अपने देह का त्याग करेगी, ये जानते थे शिव। तो भगवान शिव ने कोई आज्ञा नहीं दी, कोई उत्तर नहीं दिया, शांत भाव से बैठ गए। सती जी आज गंगा के तट की ओर चली, और गंगा के तट पर जाकर के जब सती जी खड़ी हुई, तो सती जी की 60 बहनें थी, सब सती से मिली, लेकिन किसी ने भी सती से वार्तालाप नहीं किया। उनके पति भी मिले, उन्होंने भी कोई वार्तालाप नहीं की, लेकिन मां जब सामने से निकली और मां ने अपनी बेटी को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गई। एक तो प्रसन्नता इस बात की थी कि बेटी आई है यज्ञ में, और दूसरी प्रसन्नता इस बात की थी कि आज इसके आने पर इसके पति और इसके पिता में जो विरोध है वो समाप्त तो हो जाएगा। तो मां का स्नेह उमड़ पड़ा और जल का पात्र लेकर के सती जी को पिलाने के लिए मां दौड़ी है। आदर से सती को जल का पात्र माने दिया, सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक मां मिली है।
सादर भले ही मिली एक माता, भगने में बहुत मुस्का। सादर भले जरे सब गाता, दक्षिण कछु पूछी उशनाता, उजरे सदाता समाचार सब शम कर पाए वीर भक्त कर को पाए समाचार सब
माँ के हाथ से सम्मान करने के लिए माँ का सतीज ने वो पात्र लिया और पात्र लेकर के सती ने उसे फेंक दिया। सम्मान भी किया लेकिन थोड़ा सा थसक भी दिखाई। जितना माँ पर बच्चे का अधिकार होता है ना, पिता के सामने थोड़ा बच्चे को भय लगता है, डर लगता है, लेकिन माँ पर ज्यादा बच्चा अधिकार, बेटी हो बेटा हो, मचलता है तो माँ के सामने जल्दी मचल जाता है। नखरा यदि दिखाता है तो माँ के सामने जल्दी, पिता से थोड़ा डरता है। तो माँ का सम्मान किया, पात्र तो लिया लेकिन फिर फेंक दिया। और मां से कहा सती जी ने कि मां पहले मैं यज्ञ मंडप की शोभा को देखने के लिए जा रही हूं और फिर तेरे से आकर के अभी मिलती हूं। इतना कहकर कि सती वहां से चली। यज्ञ मंडप के अंदर सती जी ने प्रवेश किया। अरुद्रभागम तम भिक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। सती ने वहां पर देखा कि देवता बैठे हैं, एक और किन्नर बैठे हैं, सब लोग सभा में यज्ञ की बैठे हैं और आहुतियां दी जा रही हैं। इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, लेकिन एक नाम सती जी के कान में नहीं पड़ रहा है। शिव का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि शिव का अपमान करने के लिए वो यज्ञ हो रहा था। तो सती जी ने कहा कि यद्वक्षरम नाम गिरेरितम निर्णाम, मेरे पति का कितना सुंदर दो अक्षर का नाम है शिव, कोई लंबा चौड़ा बड़ा नहीं है और कितना पवित्र नाम है। शेते तिष्ठति सर्वम जगत यस्य सः शिवः। शिव कहते हैं जिसमें सारा जगत शयन करे, सारे जीवों को शांति प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं, भोले भंडारी हैं। और मैंने शिव द्रोही के घर ही तो जन्म लिया है। सती ने कहा कि मुझे लगता है मेरा पिता ये दक्ष नहीं है, यदि दक्ष होता तो कभी शिव से विरोध नहीं करता, उनके स्वरूप को ही पहचानता, क्योंकि शिव का संसार में कोई बैरी ही नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे,
श्री राधे।
भागवत में आया है निर्वैरम शांत विग्रहम शिव है। देखिए आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाएं तो समय से आपको मंदिर खुलने को मिलेगा, ये समय निश्चित है। लेकिन एक शंकर भगवान का मंदिर ऐसा है, आप जब चाहो तब भोले बाबा बैठे हैं दर्शन देने को, आओ दर्शन करो। कितने भोले हैं, तभी तो नाम भोले रखा है उनका। भोले बाबा जब जाओ दर्शन देने के लिए बैठे, पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, जो कुछ चढ़ा दो, अरे एक चोर ने तो, ये पुराणों में कथा आती है, एक गुणनिधि नाम का चोर था। एक दिन ये चोरी करने के लिए गया, कोई वस्तु उसे चुराने के लिए जब नहीं मिली तो उसने देखा कि बाबा का मंदिर है, भोले बाबा का, चलो घंटा लटका हुआ है उतारूं और बाजार में बेच करके कुछ पैसे प्राप्त कर लूंगा। जब वो अंदर गया मंदिर के, ऊंचा घंटा लटका हुआ है, अब बार बार हाथ ऊपर करे लेकिन घंटा हाथ आए नहीं। अब चोर ने विचार किया कि कैसे घंटा उतारूं, अब मन में लालच भी है कि घंटा मिल जाए, कुछ पैसे कमा लूंगा, मिल जाएंगे। अब बार बार हाथ ऊपर करे लेकिन घंटा नहीं आए, लालच भी लोभ भी मन में। नीचे शिव पिंडी देखी, उसने सोचा कि अब यहां कोई नशनी तो है नहीं, कोई और चढ़ने का साधन नहीं है, चलो शिव की पिंडी पर ही पैर रख करके चढ़ जाता हूं। भोले बाबा तो देख रहे हैं उसके भोलेपन को, कितना भोला है। जो उसने घंटा को उतारने के लिए भगवान की पिंडी पर अपना पैर रखा, पिंडी में कंपन हुआ और जो वो चढ़ा तो साक्षात मूर्ति से, उस पिंडी से भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रभु बोले, भैया कोई तो मेरे ऊपर पत्र चढ़ावे, कोई पुष्प चढ़ावे, कोई जल चढ़ावे,